11 दिसंबर बुधवार दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। नागरिकता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में बहस जारी।
एनआरसी हॉबी ना, सीएबी हॉबे ना, इट विल नॉट हैपन इन बंगाल बट वी विल नॉट लेट इट हैपन एनीवेयर इन इंडिया।
पूर्वोत्तर राज्य असम में विधेयक के विरोध में प्रदर्शन और आगजनी। नानावती आयोग ने गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी।
साफ सरकार के सिवा कोई का इतने बड़े में हाथ नहीं होता, सरकार का ही काम है ये। 6-6 महीने के बच्चों को काट दिया गया, जब सरकार ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो किया किसने।
और बताएंगे आपको फ्रांस में होने वाले विरोध प्रदर्शन बाकी दुनिया से अलग क्यों है। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। नागरिकता संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में बहस चल रही है और अब से थोड़ी देर में इस पर वोटिंग होने वाली है। सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि बंटवारे के बाद पैदा हुए हालात के कारण सरकार को ये विधेयक लाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अल्पसंख्यकों के साथ अपना वादा निभाया, लेकिन 3 पड़ोसियों ने अपना वादा नहीं निभाया। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस विधेयक के जरिए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। म्यांमार की नेता आंग सान सूची ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेना का बचाव किया है और कहा है कि सेना पर लगे नस्लीय हिंसा के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि उनके देश के खिलाफ लाया गया मुकदमा अधूरा और गलत है। 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुई हिंसा के मामले में उन्होंने कहा कि सेना स्थानीय विद्रोही गुटों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया है कि हो सकता है कि सेना ने ताकत का गलत इस्तेमाल किया हो। पुख्ता तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि सेना के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए अधिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होगा, या फिर उनसे विद्रोही गुट के सदस्यों और नागरिकों की पहचान में चूक नहीं हुई होगी। कई मामलों में हो सकता है कि वो खाली गांवों की लूटपाट को रोक नहीं पाए होंगे, लेकिन ये सभी आपराधिक कानून के तहत चलाई जाने वाली प्रक्रिया है जिनकी सुनवाई कोई व्यक्ति नहीं, म्यांमार सरकार करेगी। म्यांमार की नेता आंग सान सूची के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जंगलों में लगी भीषण आग के कारण धुएं से घिरे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आज करीब 20,000 लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कारगर कदम उठाए। इधर जलवायु परिवर्तन पर मुहिम चला रही युवा ग्रेटा थनबर्ग ने सरकारों और बड़ी कंपनियों पर आरोप लगाया है कि वो चालाकी से जलवायु परिवर्तन को ना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैड्रिड में हो रहे जलवायु सम्मेलन में थनबर्ग ने कहा कि मौजूदा संकट से निपटने के लिए दूरगामी उद्देश्य रखना अच्छा करने की बजाय अधिक बुरा करने जैसा है, खासकर इसलिए क्योंकि वो बार बार ऐसा करने से बचने के लिए उसमें खामियां तलाशते रहते हैं।
Countries are finding clever ways around having to take real action.
असल मायनों में कोई कदम ना उठाना पड़े इसीलिए वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जैसे उत्सर्जन के आंकड़ों को दोगुना कर हिसाब करना, अपने देश में उत्सर्जन के आंकड़ों को कम करने के लिए दूसरे देशों में अपना व्यापार लगाना, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए नियत उद्देश्यों को न बढ़ाना और किए गए नुकसान की भरपाई करने से बचने की कोशिश करना। इन सारी कोशिशों को हमें रोकना होगा। हमें उत्सर्जन के आंकड़ों को जल्द से जल्द कम करना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। ग्रेटा थनबर्ग के शब्द। टाइम्स पत्रिका ने ग्रेटा थनबर्ग को इस साल का पर्सन ऑफ ईयर चुना है। 92 साल के टाइम्स के इतिहास में ये सम्मान पाने वाली ग्रेटा सबसे कम उम्र की महिला हैं। टाइम्स के मुख्य संपादक एडवर्ड फेलिसेंथाल ने कहा है कि वो बेहद कम उम्र में और बेहद कम वक्त में जलवायु परिवर्तन रोकने की मुहिम की एक शक्तिशाली आवाज बन चुकी हैं। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडुआर्डो फिलिपे ने राष्ट्रीय पेंशन योजना का खाका पेश किया है, जिसका फायदा 2022 से काम शुरू करने वाले हर नागरिक को मिलेगा। इसमें 45 साल या उससे अधिक की उम्र के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री फिलिपे का कहना है कि इसके बाद रिटायर होने की उम्र पहले की तरह 62 साल ही रहेगी, लेकिन पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी को 64 साल की उम्र तक काम करना होगा। अगले साल फरवरी को ये योजना संसद के सामने पेश की जाएगी। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं शाम की सभा, दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी, संदीप सोनी के साथ। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में दो दिन पहले पास होने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आज राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक पर बीते लगभग 6-7 घंटे से लगातार बहस जारी है। बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली राज्यसभा में जारी इस बहस पर नजर बनाकर रखे हुए हैं और इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं।
संदीप साहब, अभी भी बहस चल रही है। अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो लोगों के जो सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं अपने भाषणों के दौरान, उसका जवाब दे रहे हैं।
किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को दुखी करने के लिए नहीं, हमने मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जो अभी मेरा भाषण चल रहा है भैया,
नहीं सुन रहा हूं, आप चिंता मत करिए।
मान्यवर, ये जो लोग चिंता कर रहे हैं कि माइनॉरिटी का
बाद में,
इस देश के माइनॉरिटी की और मुसलमानों के साथ अन्याय होगा, ये नहीं अन्याय होगा। मैं एक आंकड़ा सदन के सामने रखना चाहता हूं। 2013-14 में जो कांग्रेस का अंतिम बजट था, इसमें माइनॉरिटी कल्याण के लिए 3500 करोड़ थे। 19-20 के बजट में 4700 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, कई सारे
तो संदीप बहस जारी है, लेकिन जो विपक्ष में है इसके, या जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं इस पूरी नागरिकता संशोधन अधिनियम की, वो ये कह रहे हैं कि इस बिल को सिर्फ अलग से नहीं देखा जा सकता, इसको NRC के साथ देखना होगा, जो नेशनल सिटीजन ऑफ रजिस्ट्री को, जिसको कि अभी अपडेट किया गया है असम में, जिसको लेके इतना हंगामा हो रहा है। और सुबह से ये जो बहस जो है वो जारी है, तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है होम मिनिस्टर ने जो है वो पर जो है वो बहस के लिए रखी थी। विपक्ष की तरफ से बहस की शुरुआत कांग्रेस के आनंद शर्मा ने की थी, जिन्होंने प्रस्तावित कानून के संविधान विरोधी होने की बात के साथ साथ ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का बार बार कांग्रेस पार्टी को विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। आनंद शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस को ब्रितानी हुकूमत द्वारा बैन कर दिया गया था, तो अंग्रेजों की मदद को मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आगे आए थे।
यह प्रावधान भी किया जा रहा है माननीय सभापति महोदय कि ऐसे प्रवासी अगर नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 या तीसरे शेड्यूल की शर्तें पूरी करने के उपरांत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं।
ये जो थे ये गृह मंत्री अमित शाह थे, जिन्होंने जो प्रस्तावित कानून के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जो नया कानून आ रहा है उसमें जो बिना वैध दस्तावेज़ों, जैसे पासपोर्ट वीज़ा वगैरह के बिना जो आते हैं, और वैसे दस्तावेज़ जो कि एक्सपायर हो जाते हैं, उनको अब गैर कानूनी नहीं माना जाएगा। साथ साथ इस बीच में जो लोग आकर यहाँ भारत में, उन्होंने अगर कोई ज़मीन खरीदी होगी, जायदाद खरीदी होगी, उसको भी मान्य माना जाएगा, और उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो भी जारी रहेगी। और बात कर रहे थे हम आनंद शर्मा की, जो कि कांग्रेस के नेता हैं और मनमोहन सिंह सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं।
तो यही दो संगठन आगे आए, वाइसरॉय ललित गो को एक के बाद एक चिट्ठी देके, चाहे वो हिंदू महासभा थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी, जिन्होंने कहा वी विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस लॉयल टू हर मेजेस्टीज गवर्नमेंट। क्या वो बंगाल में सरकार नहीं बनी? क्या वो सरकार आज के पंजाब में नहीं बनी? सावरकर जी ने, उन्होंने कहा आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद मिस्टर जिन्नाज प्रपोजल फॉर अ टू नेशन।
तृणमूल सांसद जो है डेरेक ओबेरॉन ने जो है इसके बाद अपना भाषण दिया, और उन्होंने 44 साल पहले हिटलर के दौर में, जब 1930 के दशक में जर्मनी में लोगों से नागरिकता साबित करने के लिए कानून लाया गया था, उसका जिक्र किया और कहा कि जब हिटलर ने यहूदियों को रैट यानी चूहा बुलाना शुरू कर दिया था, आज अमित शाह लोगों को दीमक बुला रहे हैं। ऐसे लोगों को इस तरह के लफ्ज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। डेरेक ओबेरॉन ने सवाल किया कि किस बिना पर कहा जा रहा है कि भारत में करोड़ों घुसपैठिए घुसे हुए हैं।
The Prime Minister, the Home Minister are using the numbers. Budh, Sikh, let's look at the numbers, not my numbers. Intelligence Bureau
आईबी के प्रमुख ने समिति के सामने घुसपैठियों की बात पर जवाब देते हुए जो तादाद गिनाई वो यूं थी: बौद्ध 2, पारसी 2, ईसाई 55, सिख 5,000, 25,000 हिंदू, यानी कि कुल 31,000। तृणमूल सांसद ने अपनी बात कुछ यूं समाप्त की:
एनआरसी हॉबी ना, सीएबी हॉबी ना, वी ऑल नो इट विल नॉट हैपन इन बंगाल, बट वी विल नॉट लेट इट हैपन एनीवेयर इन इंडिया।
थैंक यू।
जय हिंद।
डीएमके और सीपीएम के सांसदों ने इसका विरोध किया तो आईडीएमके सरकार के साथ खड़ी दिखी, मगर हाल तक बीजेपी की सबसे लंबी सहयोगी दल शिवसेना के संजय राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो ये कहना बंद कर दे कि जो बिल के विरोध में है वो देशभक्त नहीं है।
तो देशभक्ति का प्रमाण पत्र किसी से लेने की हमें जरूरत नहीं है। हम कितने कठोर हिंदू है उसका हमें प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और हमारे 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 स्कूल के हेडमास्टर बाला साहब ठाकरे थे, अटल जी भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, सब हम सबको मानते हैं।
और विपक्ष जो है संदीप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात कर रहा है, लेकिन देखते हैं, बहस अभी भी राज्यसभा में जारी है।
नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर आवाज पूर्वोत्तर राज्य असम में उठ रही है। असम में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है। आज भी राजधानी गुवाहाटी में लोग सड़कों पर उतरे। गुवाहाटी से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट सुनिए।
गृह मंत्री अमित शाह जिस वक्त राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश कर रहे थे, लगभग उसी वक्त असम की राजधानी गुवाहाटी की सड़कों पर सैकड़ों छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन जारी था। छात्रों की यह डिमांड है कि कैब के खिलाफ सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार यह कानून उन पर जबरन थोपना चाहती है, इसका विरोध किया जा रहा है। गुवाहाटी शिलोंग हाईवे पर अलग अलग जगहों पर छात्रों ने टायर जलाकर सड़कों को जाम कर दिया। इसके कारण सैकड़ों गाड़ियां कई किलोमीटर लंबी कतारों में फंसी रह गईं। शाम होने के बाद भी छात्रों का यह प्रदर्शन लगातार जारी रहा। इस दौरान हमारी मुलाकात एक प्रदर्शनकारी से हुई।
विरोध मतलब देखिए, जो पहले ही से जो एनआरसी का हम लोग पहले ही से 1 करोड़ का जो माइग्रेट है, जो बांग्लादेशी का जो इश्यू है वो तो हम लोग ले आए हैं। तो अभी क्या है, अभी जो मतलब सेकुलर है, जो हिंदुज़म और मुस्लिम का ये लेके जो हुआ है, अभी जो कैब आने वाला है तो असम में आने से क्या है, अल्टीमेटली हम लोग का अनएम्प्लॉय बहुत है। जो हम लोग का असम से इतना अनएम्प्लॉय है और अनएम्प्लॉय लोग का वजह से हम लोग का जो एक्सट्रीमिस्ट का जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ते रहा है। तो इसीलिए अभी जो दूसरा कोई आएगा तो आने से और अनएम्प्लॉय बढ़ जाएगा। हम लोग का जो ज़मीन है वो ज़मीन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग का जो भाषा है, जो हम लोग का लोकल भाषा आसामी से, वो आसामीज के असर भी गिरेगा।
कैब के खिलाफ असम बंद की घोषणा 3 दिन पहले कुछ छात्र संगठनों ने की थी। नासो के आह्वान पर तमाम छात्र संगठन इस बंद में शामिल हो गए थे और कल तक गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों में जोरदार दर्शन किए गए। न केवल गुवाहाटी बल्कि तिनसुकिया, जोरहाट, डिब्रूगढ़ जैसे इलाकों में भी बड़े प्रदर्शन हुए हैं। इस बंद के कारणों की पड़ताल करने के लिए हमने ऑल असम गोरखा स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष प्रेम तमांग से बातचीत की। प्रेम तमांग ने बीबीसी से कहा कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त है।
आज सुबह से हम लोग का आंदोलन का धारा अड़के दिखा रहा है। इसमें पब्लिक हो, कोई भी किसी तरह से काम कर रहा है। इसमें तो कोई इंस्ट्रक्शन का भी नहीं है, कुछ फॉर्मेलिटी भी नहीं है। अभी क्या होगा, ये आंदोलन का जो इसका शुरुआत आंसू ने किया था और हम लोग खाती ऑर्गेनाइजर ने, लेकिन ये इशू को डाइवर्ट करके पब्लिक ने अपने से अपनी तरह से कर रहा है अभी।
तो क्या यह असम आंदोलन की याद दिला रहा है? गुवाहाटी के हिंदी अखबार दैनिक पूर्वोदय के संपादक रविशंकर रवि कहते हैं,
ये जो पूरा का पूरा जो कैब के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, इसमें मुख्य रूप से इसको नेतृत्व कर रहा है आसू और कृषक मुक्ति संग्राम समिति भी इसमें विरोध कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं है, इस आंदोलन में और भी समूह जुड़ गए हैं। जैसे कलाकारों का दल जुड़ गया है, जाहनू बर्मा ने कह दिया है कि जो असम में गुवाहाटी में फिल्म फेयर अवार्ड होने वाला है तो वो अपनी फिल्म है, उनकी बहुत ही पॉपुलर और अवार्डेड फिल्म है भांगा खिड़की, तो वो हम उसका स्क्रीन नहीं करेंगे। कलाकारों के दल ने कहा है कि वो सरकारी कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह की जो भागीदारी हो रही है, इससे आंदोलन का फलक थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है।
बहरहाल इस आंदोलन के कल भी जारी रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इस आंदोलन में आम नागरिकों की स्वतः स्फूर्त भागीदारी है, ऐसे में आंदोलन को नियंत्रित कर पाने में पुलिस को भी दिक्कतें होंगी। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए गुवाहाटी में।
सत्रह साल पहले यानी साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों की जांच के लिए गठित नानावती आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। साल 2002 में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में लगी आग में 59 हिंदू मारे गए थे। इनमें ज़्यादातर लोग वो थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इस घटना के बाद गुजरात में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, जिनमें सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और मारे गए लोगों में बड़ी संख्या मुसलमानों की थी। गुजरात में अहमदाबाद के पास नरोदा पाटिया वो जगह थी जहां दंगों के दौरान बड़ी संख्या में मुसलमान मारे गए थे। आज नानावती आयोग की रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा नरोदा पाटिया पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने उन दंगों को अपनी आंखों से देखा था।
कितने हमारे जवान जवान बच्चे मर गए, घर के बेघर हो गए, कितने जवान औरत विधवा हो गई। वो तो जब तुमने नहीं करा तो करा कौन? और जब हमको मार रहे थे पुलिस लोग तो यही बोलते थे कि तुम हमको ऊपर से मत मारो, बोले तुमको ऊपर से ऑर्डर आया तुमको मारने का, तो ऑर्डर किसने दिया गया था? तो हम बोले ना ये तो नहीं था तो कौन थे फिर? क्या हमने अपने आप से हमारे बच्चों को मारा? हमारे परिवार के सब पर के अंदर 19 इंसान मरे ले, सोचो कैसा हमारा जी जलता होगा। तो करे कौन? हमने आपसे मारा हमारे बच्चों को? ये तो गलत बात है ना। ये सरकार इनके ऐसे कानून है, रात में फैसले बना लेते, दिन में सुना देते, ऐसा थोड़ी चलता अंधा का कानून। डरो इंसाफ से तो डरो, खुदा को तो डरो, इंसाफ तो करो, सही पे गलत क्या। हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान को सजा नहीं होना चाहिए, जो गुनाह करे गुनहगार को सजा तो मिलना चाहिए, हम भी खुद बोलते।
हमारा एक ही कहना है कि जिस वक्त 2002 में जो दंगा हुआ था, बेइंसाफ, सरकार के सिवा कोई का इतने बड़े में हाथ नहीं होता। सरकार का ही काम है ये, छः छः महीने के बच्चों को काट दिया गया, तो क्या ये हम ही कर सकते हैं ये काम? जब सरकार ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, तो किया किसने? क्या मुसलमान मुसलमानों के बच्चों को जला दिया? हमारी बहन बेटियों को हमने ही बलात्कार किया।
नरेंद्र मोदी साहब को अगर क्लीन चिट मिली है तो वो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर 150 विटनेस थे, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भाई नरेंद्र मोदी ने आके हमको तलवार से मारा या बंदूक से मारा, ये हम लोगों की ईमानदारी है। लेकिन उनको जो निभाना था, राजधर्म का पालन जो करना था, उन्होंने नहीं किया, ये एक सच्चाई है। और वाजपेयी जी वो बोल कर गए, लास्ट तक ये बात उनको सुननी ही पड़ेगी मोदी जी को कि भाई आपने राजधर्म का पालन नहीं किया है।
नहीं नहीं, ये गलत है। क्लीन चिट कहाँ से हो सकती है? हम लोगों पे यहाँ इतना जुल्म हुआ, हमारे साथ इतना अत्याचार करा, यानी जिसका यानी हम लोग कभी सोचते हैं तो हमको रातों की नींद उड़ जाती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे, औरतों को सताया गया, जिंदा जला दिया गया, कहाँ से यानी क्लीन चिट मिल जाएगी? ये तो मैं बोलता हूँ, अगर क्लीन चिट मिल जाएगी तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं और हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो ये कोई बात नहीं हुई।
क्लीन चिट मिल जा रही है, वजह क्या है भाई? वजह क्या है? वजह यही है कि भाई आपका हुकूमत है, आपके पास में पावर है, ताकत है, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होनी चाहिए।
मैं समझता हूँ कि जो नानावटी पंच का जो भी ये जो आज क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी साहब को, वो बिल्कुल यानी सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्होंने क्या करा, पक्षपाती का एक वलन पैदा करा, हिंदू और मुसलमान की कॉम्युनल एक तैयार पैदा करी, और आज भी किसी मुसलमान के ऊपर हिंदू को भरोसा नहीं, हिंदू को मुसलमान के भरोसा नहीं। तो हमारे मोदी जी जो आए, जब से इस राजगादी पर बैठे तब से ये ऐसा वातावरण तैयार करा है कि ना कोई एक दूसरे से बात करता है, ना एक दूसरे से मिलता रहता है। मैं कहता हूँ इसको बहुत बड़े अंदाज देखा जाए, लंबे समय में क्या होगा वो तो खुदा जाने, भगवान जाने।
नरोदा पाटिया, अहमदाबाद, गुजरात से ये आवाज़ें आप तक पहुँचाई बीबीसी संवाददाता रॉक्सी गागड़ेकर छारा ने। यहाँ ये बात भी उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम आरोपों से इनकार करती है और इन्हें बेबुनियाद बताती है। फ्रांस में इन दिनों सरकार की ओर से प्रस्तावित पेंशन नीति के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों ने इतना बड़ा रूप ले लिया है कि पिछले हफ्ते पूरे देश में यातायात ठप सा हो गया। वैसे तो दुनिया भर में अलग अलग मुद्दों और मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन फ्रांस की तरह संगठित, व्यवस्थित और व्यापक प्रदर्शन शायद ही कहीं और देखने को मिलते हैं। इसकी वजह क्या है? इस बार दुनिया जहान में बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौड़ ने इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है।
दुनिया जहां, ये आवाज है फ्रांस की राजधानी पेरिस में जुटे प्रदर्शनकारियों की, जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की यूनिवर्सल पॉइंट बेस्ड पेंशन प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। मैक्रों की सरकार चाहती है कि देश में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए चल रही अलग अलग पेंशन स्कीमों को हटाकर एक ही योजना बना दी जाए, मगर लोगों का कहना है कि उनका पेशा अलग है और जरूरतें भी। ऐसे में सबके लिए एक ही पेंशन योजना बना देना ठीक नहीं। शिक्षक, वकील, परिवहन कर्मचारी, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और अन्य क्षेत्रों के कामकाजी लोग सरकार की योजना के विरोध में उतर आए हैं। नतीजा, पिछले दिनों फ्रांस पूरी तरह लगभग ठप सा हो गया। कई सालों बाद इतने बड़े स्तर की हड़ताल देखने को मिली, लेकिन व्यापक विरोध प्रदर्शनों का ये पहला मौका नहीं था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं कि इस तरह के कई आंदोलनों ने फ्रांस को दिशा दी है।
पेंशन रिफॉर्म्स के हुए थे 2010 के आसपास हुए थे, इसी सेंचुरी के बिगनिंग में स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट हुए हैं, फिर ट्रेड यूनियंस जो पर्टिकुलरली एविएशन सेक्टर से रिलेटेड हैं, ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट रहे हैं जिनको आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने काफी तरह से दिशा दी है। ऐसे काफी मोमेंट रहे हैं जो बेंचमार्क मोमेंट्स रहे हैं इनके इतिहास में, जिन्होंने कंट्री की व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को काफी इन्फ्लुएंस किया है।
अभी पेंशन को लेकर हो रहे प्रदर्शनों में सड़क यातायात से लेकर हवाई सेवा तक प्रभावित हुई। कई बार देश को चलाने वाले एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले लोग भी काम बंदी कर देते हैं। नतीजा, पूरा देश थम सा जाता है। इन प्रदर्शनों को प्रभावी बनाती है फ्रांस की यूनियनें, यानी अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों, श्रमिकों, कारोबारियों के संगठन। फ्रांस में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नायर कहते हैं कि यही यूनियनें ये ख्याल भी रखती हैं कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस या सरकार प्रदर्शनकारियों का दमन न कर पाए।
यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखें तो शायद फ्रांस ही एक ऐसी बड़ी इकोनॉमी होगी जिसकी यूनियंस आज भी काफी स्ट्रांग है, जिनकी मेंबरशिप अच्छी है और जो कि एक तरह से इंडस्ट्रियल एक्शन कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्राइक हो या प्रोटेस्ट हो। जब एक यूनियन की बात आगे आती है तो दूसरे यूनियंस भले ही उनसे पूरी तरह सहमत ना हो तो भी अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं और वो इस बात पे जरूर नजर रखते हैं कि पुलिस का दमन या सरकार का दमन जो इन प्रोटेस्ट या स्ट्राइक के खिलाफ हो वो एकदम सीमित रहे।
फ्रांस में एक दूसरे के सहयोग की इस संस्कृति की जड़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन तक जाती हैं। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुए व्यापक प्रदर्शनों के कारण ही 9वीं सदी से चली आ रही राजशाही का अंत हुआ था और पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई थी। डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं, तभी से यहाँ प्रदर्शनों की मजबूत संस्कृति की नींव पड़ी है।
जो 8-10 सेंचुरीज में भी आप देख सकते हैं पीछे प्रदर्शन होते थे, बट पर्टिकुलरली एक पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री ऐसा है जिसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसने इनफैक्ट वर्ल्ड का पूरा डेमोक्रेसी का, गवर्नेंस का सिस्टम ही चेंज कर दिया था। और फ्रांस में एक ऐसी इंटरेस्टिंग मिक्स होता है, इसमें एक बहुत ही सुंदर सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का मिक्स है, यानी कि ये कैपिटलिस्ट होते हुए भी जो है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। फ्रांस में प्रोटेस्ट का टिपिकल कैरेक्टर पर्टिकुलरली ये है कि ये बहुत ही व्यवस्थित है।
फ्रांस का इतिहास सत्ता में बैठे शक्तिशाली वर्ग के खिलाफ आम लोगों के उठ खड़े होने के उदाहरणों से भरा हुआ है। इनमें 1871 का पेरिस कम्यून भी अहम है, जब मजदूर वर्ग ने पहली बार सत्ता संभाली थी। 1905 और 1917 की रूसी क्रांतियां भी पेरिस कम्यून से प्रेरित मानी जाती हैं। इसके अलावा फ्रांस में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टियों का भी खासा प्रभाव रहा है। 1981 में फ्रांस में पहली बार सोशलिस्ट उम्मीदवार ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और 1995 में हुए चुनावों तक समाजवादी ही राष्ट्रपति बनते रहे। इससे भी ट्रेड यूनियनिज्म मजबूत हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नायर कहते हैं कि इसी कारण यहाँ प्रदर्शनों की संस्कृति इतनी मजबूत है।
सरकार जो है इन प्रोटेस्ट के सामने उनका दमन नहीं कर पाती है, ना ही कर सकती है, क्योंकि फ्रेंच जो कल्चर है, जो फ्रेंच आम आदमी है, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि प्रोटेस्ट करना उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है। पिछले साल भी आपने देखा होगा येलो वेस्ट मूवमेंट जो कि करीबन 10 महीने तक चलती रही और अब भी कभी कभी उभर के आती है, उसमें लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने के राइट को जनता काफी डिफेंड करती है।
फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यही फ्रांस का आधिकारिक ध्येय वाक्य भी है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शीतल शर्मा बताती हैं कि यही कारण है कि फ्रांस में किसी की भी आवाज अनसुनी नहीं रहती।
फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जाना चाहूंगी, उसके कई परिणाम हम देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणाम। जब इंडिविजुअल उभर कर और उसको रिप्रेजेंटेशन मिलने की बात आई कि भाई आप एज व्यक्ति विशेष समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं और आपकी अहमियत है, आपकी काउंटिंग होती है, जब आम आदमी को महत्व मिला तो उसके श्रम को, उसके लेबर को भी महत्व मिला। और इसी तरीके से ये चीजें ट्रांसलेट होते होते इनका मिक्सचर बना सोशलिज्म से, कम्युनिज्म से साथ में आए और ये विचारधाराओं ने जो लेबर उसको काफी सशक्त किया।
फ्रांस में जागरूकता का स्तर ऐसा है कि कोई भी शख्स खुद को राजनीतिक और आर्थिक मामलों से अछूता नहीं रख पाता। हर मामले में वो भागीदारी और प्रतिनिधित्व चाहता है। जब कभी आम फ्रांसीसी जनता को लगता है कि उसे फैसले लेने की प्रक्रिया से दूर रखा गया या सरकार का कोई कदम उसके जीवन को प्रभावित कर सकता है, तब तब उसने प्रदर्शन किए हैं, आंदोलन चलाए हैं और क्रांतियां की हैं। इन्हीं प्रदर्शनों, आंदोलनों और क्रांतियों ने बाकी दुनिया के प्रदर्शनों, आंदोलनों और क्रांतियों को प्रेरित किया है।
दुनिया जहान में आदर्श राठौड़ की प्रस्तुति के बाद चलते हैं मुंबई। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इस समय मुंबई में तीसरा और आखिरी T20 मुकाबला हो रहा है। ज्योतिका सिंह स्टूडियो में मौजूद हैं, ताजा स्कोर बताइए।
जी, तो अभी 11 ओवर खत्म हो चुके हैं और 132 स्कोर चल रहा है। रोहित शर्मा और KL राहुल पिच पर मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और अगर आप इनको कहें तो आज चौकों और छक्कों का मैच है। और आगे अगर मैं आपको बताऊं तो वेस्ट इंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। लेकिन टीम इंडिया में दो बदलाव हुए हैं, युजवेंद्र चहल और रविंद्र जडेजा की जगह कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। और वहीं वेस्ट इंडीज की टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोनों टीमें सीरीज में 1-1 की बराबरी पर हैं और आज का मैच जीतने वाली टीम सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। ऐसे में दोनों टीमें आज जीत के लिए पूरी दमखम झोंकती नजर आएंगी। विंडीज की टीम ने रविवार को दूसरा T20 मैच जिस अंदाज में जीता था उससे उनके हौसले जरूर आसमान छू रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर टीम इंडिया भी अपनी वापसी के लिए आज कमर कस चुकी लग रही है।
बहुत शुक्रिया ज्योतिका सिंह से खेल समाचारों के बाद चलते चलते मुख्य समाचार पुनः मानसी दास से।
BBC समाचार। नागरिकता संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में कई घंटों लंबी चली बहस के बाद अब इस पर वोटिंग चल रही है। बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए फिलहाल वोटिंग जारी है। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में सेना का बचाव किया है और कहा है कि सेना पर लगे नस्लीय हिंसा के आरोप बेबुनियाद हैं। जंगलों में लगी भीषण आग के कारण धुएं से घिरे सिडनी में आज करीब 20,000 लोगों ने जलवायु परिवर्तन के लिए विरोध प्रदर्शन किया। टाइम्स पत्रिका ने जलवायु परिवर्तन पर मुहिम चला रही युवा ग्रेटा थनबर्ग को इस साल का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडुआर्डो फिलिपे ने राष्ट्रीय पेंशन योजना का खाका पेश किया है जिसका फायदा 2022 से काम शुरू करने वाले हर नागरिक को मिलेगा। अगले साल फरवरी में ये योजना संसद के सामने पेश की जाएगी। हंगरी की सरकार ने एक नया कानून नेशनल कल्चरल काउंसिल पारित किया है जिसके बाद सरकारी मदद से चलने वाले थिएटर और उनमें होने वाले नाटकों के कंटेंट पर अब सरकार का अधिक नियंत्रण होगा। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत भारती समय अनुसार सुबह 6:30 बजे। फिलहाल संदीप सोनी के साथ समस्त सहयोगियों को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।